हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज बहुत ही विशेष पवित्र दिन है गोवर्धन पूजा का। तो आज गोवर्धन पूजा के विषय में हमने सवेरे भी चर्चा की थी, तो उस चर्चा को हम संक्षेप में सुनेंगे, उसके बाद कुछ और आगे की बातें हम सुनेंगे। तो आज सवेरे हमने चर्चा की थी कि गोवर्धन जो है मूल रूप में उनका निवास गोलोक धाम में है, गोलोक धाम में है। और भगवान कृष्ण जब इस धरा धाम में आना चाहते हैं तो राधा रानी से कहते हैं कि तुम मेरे बिना तुम जीवित नहीं रहना चाहती हो, तो मैं जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो पृथ्वी में। तो राधा रानी कहती हैं कि आपके बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकती, लेकिन जहाँ गोवर्धन ना हो, वृंदावन ना हो और यमुना नदी ना हो, वहाँ मुझे सुख नहीं मिलता है ना। तो राधा रानी को जीवन भी चाहिए और सुख भी चाहिए। उनके जीवन तो कृष्ण है, कृष्ण के बिना वो जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जहाँ वृंदावन नहीं है, गोवर्धन है, यमुना नहीं, उनके बिना सुख नहीं मिलेगा। तो फिर भगवान ने तीनों को भेजा, 84 कोस की जो ब्रज भूमि है गोलोक धाम की, उसको भेजा, यमुना नदी को भेजा और गोवर्धन को भेजा। तो जो 84 कोस की ब्रज भूमि, वो तो अपने ठीक स्थान पर आ गई जहाँ पर उसको आना था, और यमुना जी भी आ गई। लेकिन जो गोवर्धन है, तो ये जब आए तो इन्होंने जन्म लिया एक पर्वत के पुत्र के रूप में जन्म लिया। पर्वत अगर आएगा तो पर्वत के पुत्र के रूप में ही जन्म लेंगे। द्रोण पर्वत जो शालमली द्वीप में है, हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं वो जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप के को जो है एक समुद्र घेरे हुए है, और समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप, उसको फिर एक और समुद्र घेर रहा है, फिर उसको घेर रहा है शालमली द्वीप। तो शालमली द्वीप में जो द्रोण पर्वत है, तो उनके पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ गोवर्धन का, है ना। तो बहुत सुंदर पर्वत था ये। तो पुलस्त्य मुनि गए तीर्थ यात्रा के लिए, तो जब देखा गोवर्धन को तो बहुत प्रसन्न हुए, और द्रोण पर्वत से उन्होंने याचना की कि मैं आपसे एक याचना करता हूँ, भीख मांगता हूँ, अपना पुत्र को दे दीजिए, मैं काशी में ले जाऊंगा आपके पुत्र को, वहां पर कोई पर्वत नहीं है और बहुत ये पर्वत बहुत सुंदर है, तो वहां काशी में मैं जो है इसको स्थापित करूंगा, और इसमें जो है तपस्या के लिए बहुत अच्छा ये पर्वत है। तो द्रोण पर्वत ने कहा कि महाराज, आप मुझसे याचना तो कर नहीं रहे हैं, ये तो मतलब सीधी धमकी है, अगर मैं नहीं दूंगा तो आप मुझे साप दे देंगे, तो मैं तो आपके साप से डरता हूँ, तो मैं तो नहीं देना चाहता, मैं अपने पुत्र में बहुत आसक्त हूँ, लेकिन आपके साप से डरता हूँ तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो गोवर्धन से कहा कि ठीक है चलो। तो गोवर्धन ने कहा कि मेरी एक प्रतिज्ञा है महाराज, और वो ये प्रतिज्ञा है कि जहां आप मुझे स्थापित करेंगे फिर मैं नहीं उठूंगा। तो पुलस्त्य मुनि बोले कि हाँ हाँ, मेरी ही प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको सीधे काशी में ही ले जाकर स्थापित करूंगा और बीच में कहीं छोड़ूंगा नहीं। तो गोवर्धन ने कहा तो आप मैं इतना बड़ा हूँ, भारी हूँ, आप मुझे कैसे ले चलोगे। तो गोवर्धन ने कहा कि मैं 8 योजन लंबा हूँ, 5 योजन चौड़ा हूँ और 2 योजन ऊंचा हूँ। योजन 12 किलोमीटर का होता है 1 योजन, है ना। तो 8 योजन लंबा का मतलब 96 किलोमीटर लंबा है, और 5 योजन चौड़ा मतलब 60 किलोमीटर चौड़ा, और 2 योजन ऊंचा मतलब 24 किलोमीटर ऊंचा। तो इतना मतलब मेरा जो है साइज है। तो पुलस्त्य मुनि बोले कोई बात नहीं है, तुम जो है हल्के हो जाओ, मेरे हाथ में आ जाओ तो मैं ले जाऊं तुम्हें। तो गोवर्धन ने फिर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई कि ठीक है, मैं आपके हाथ में आ जाता हूँ, लेकिन जहां आप स्थापित करोगे वहां से फिर मैं नहीं उठूंगा। तो फिर पुलस्त्य मुनि जो है जब आ रहे थे, तो भारतवर्ष में जब आए तो काशी जा रहे थे, तो ब्रजमंडल से होकर के गुजरे। तो गोवर्धन ने विचार किया कि ये जो ब्रजमंडल है, यही तो मेरा स्थान है, यहीं पर तो भगवान कृष्ण आएंगे, राधा रानी आएंगी, अपनी लीलाएं करेंगी, दान लीला, मान लीला, क्या क्या करेंगे, है? तो मैं तो अब जो है काशी नहीं जाऊंगा। तो गोवर्धन ने मन में विचार किया तो पुलस्त्य मुनि के हाथ में अपना भार बढ़ा दिया, और जब हाथ में भार बढ़ा दिया तो बहुत उनको परिश्रम होने लगा, तो उन्होंने जो है वो प्रतिज्ञा भी भूल गए और वहीं पर रख दिया है? और लघु शंका से निवृत्त होने के लिए गए और फिर जो है स्नान वगैरह किया, स्मरण किया और फिर आए और गोवर्धन से कहने लगे अब आ जाओ मेरे हाथ में, तो वो नहीं उठा। फिर अपना पूरा बल लगाया, नहीं उठा, है ना। तो फिर गोवर्धन ने कहा कि देखो महाराज, मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा आपको पहले से बता दी थी कि आप जहां मुझे स्थापित करेंगे फिर मैं नहीं उठूंगा। तो पुलस्त्य मुनि बोले कि हाँ ये तो है, लेकिन तुमने मेरे साथ में छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें अब साप देता हूँ। क्या साप देता हूँ? कि रोज एक तिल के बराबर एक दिन में तुम घटोगे। तो इस प्रकार से गोवर्धन अभी बहुत कम ऊंचाई के हैं, तो आप सोचिए 24 किलोमीटर की ऊंचाई थी पहले, 24 किलोमीटर की ऊंचाई थी और अभी कितनी ऊंचाई रह गई है, 88 फुट, और उससे भी कम घटते जा रहे हैं, गोवर्धन की ऊंचाई घटती जा रही है ना। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक तिल के हिसाब से एक दिन में ये घट रहे हैं, तो कितने साल पहले आए थे जब पुलस्त्य मुनि ने इनको स्थापित किया था, है ना। और 5000 साल पहले कितने ऊंचे रहे होंगे वो भी हिसाब लगा सकते हैं एक तिल की लंबाई के हिसाब से। तो हाँ, एक बात और मैं भूल गया कि जिस समय गोवर्धन का जन्म हुआ था द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में, तो उस समय हिमालय और सुमेरु जैसे बड़े बड़े सब पर्वतों ने आकर के गोवर्धन की पूजा की थी और स्तुति की थी, प्रणाम किया था और परिक्रमा की थी और गिरिराज नाम प्रदान किया था गोवर्धन को, क्योंकि ये सब जो हिमालय और सुमेरु आदि जितने पर्वत हैं ये जानते हैं कि ये गिरिराज गोवर्धन जी जो है कहाँ के हैं, गोलोक धाम के हैं। तो इसके बाद फिर हमने ये घटना सुनाई कि हर साल आज के दिन इंद्र की पूजा होती थी, तो भगवान कृष्ण आज के दिन 7 साल 2 महीने 8 दिन के हो गए हैं। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है पिता से पूछने में कि पिताजी ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है, ये कैसे, वो कैसे, है ना। तो कृष्ण की आदत थी हर चीज पूछने की। तो आज के दिन सवेरे सवेरे जब नंद महाराज ने सभा बैठाई और इंद्रयाग के उत्सव में मतलब किसकी क्या सेवा होगी, कैसे करना है, आयोजन करना है, तो उस सभा में जब ये सब बातें हो रही थी तो कृष्ण ने प्रश्न उठाया कि पिताजी ये किस तरह की पूजा है, इसका क्या फल होता है, इसका कुछ लौकिक लाभ है, पारलौकिक लाभ है, क्या है। तो इंद्र जो नंद महाराज ने बताया कि इंद्र की पूजा है और इसमें जो है भोग और मोक्ष सब प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण जो है विरोध किया कि इनकी पूजा से कोई भोग और मोक्ष कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है, इंद्र के बिना भी पानी बरसता है, इंद्र की पूजा के बिना भी पानी बरसता है, तो सृष्टि के सिद्धांत से पानी बरसता है, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि गिरिराज की पूजा की जाए, गौओं की पूजा की जाए, ब्राह्मणों की पूजा की जाए, क्योंकि हमारा सीधे संबंध है इनसे। तो नंद महाराज को तो कुछ उत्तर नहीं सोचा कि एक पुत्र मेरा पुत्र जो बोल रहा है अभी तो बहुत छोटी उम्र का है, तो उसके कहने से इतनी बड़ी पूजा और इतने सालों से चली आ रही है, कैसे इसको बदला जाए। लेकिन सनंद जी बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने जो है कृष्ण से प्रश्न किया कि कृष्ण तुम तो जो है साक्षात ज्ञान के भंडार मालूम पड़ते हो, अब तुम अगर कहते हो कि गिरिराज की पूजा की जाए तो विधि भी बताओ कि किस विधि से पूजा करना है। तो कृष्ण ने बड़े विस्तार से विधि भी बताई पूरी। तो जब सनंद जो है प्रभावित हो गए तो उनके प्रभाव से सब लोग प्रभावित हो गए कि ठीक है अब गिरिराज की पूजा करेंगे। तो गिरिराज की पूजा की और बहुत प्रसन्न हुए सब लोग, और भगवान कृष्ण भी विश्वास दिलाने के लिए कि गिरिराज की पूजा में साक्षात जो गिरिराज हैं वो प्रकट होते हैं, तो भगवान कृष्ण स्वयं ही इतना बड़ा पर्वत के समान रूप धारण करके गोवर्धन की कंदरा से बाहर निकले। लेकिन इतना बड़ा रूप भगवान ने जब प्रकट किया तो ब्रजवासी लोग तो डरेंगे, है ना। तो ब्रजवासी लोग ना डरें इसके लिए भगवान अपना परिचय भी देते जा रहे हैं कि तुम लोग डरो नहीं, तुम लोग जिसकी पूजा कर रहे हो मैं वही हूँ, है ना। और भगवान जो है उसको भोग लगा रहे हैं, है, तो जितना अन्नकूट था वो सब भगवान ने मतलब खाया और बड़े प्रसन्न हुए, ब्रजवासी लोग बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने घरों में आ गए। तो इसमें यह भी वर्णन हुआ था कि 100 प्रकार के गोपियों के यूथ भी आए और शिव जी को जब पता चला गिरिराज की पूजा हो रही तो शिव जी भी आए अपने प्रमथ गणों के साथ, भूत गणों के साथ, और अपना पूरा श्रृंगार करके सर्पों की माला, बिच्छू, इन सबका श्रृंगार करके आए है? और जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, राजर्षि, देवर्षि, महर्षि सब आए, तो बहुत बड़ा जो है पूजन का उत्सव हुआ गिरिराज की पूजा का। अब इसके बाद नारद जी ही ये कथा सुना रहे हैं राजा बहुलास को, तो नारद जी कहते हैं कि इस पूजा के बाद मैंने ही इंद्र को सूचना दी और मैंने ही इंद्र को सूचना दी, तो चूंकि मैं झगड़ा कराना चाहता था इसलिए इंद्र को इस प्रकार से समझाया कि इंद्र को क्रोध आए, भड़काया इंद्र को, है ना। तो नारद जी जो है अगर कोई बात बताते हैं तो उनकी अपनी इच्छा होती है कि वो किस ढंग से बात बताएं, है ना। तो नारद जी ने इस ढंग से इंद्र को बताया कि इंद्र ने कृष्ण को मान लिया है कि एक साधारण बच्चा है, और इस प्रकार से इंद्र बहुत कुपित हो गए और इंद्र ने जो है प्रलय काल के जो बादल हैं उनको आज्ञा दे दी कि तुम लोग अब जाओ और ब्रज में वर्षा करो और पूरे ब्रज को डुबा दो। तो फिर वर्णन आता है कि वो कैसे बादल थे, कितने भयानक बादल थे, वो प्रलय काल के बादल थे। ब्रह्मा जी की सृष्टि का जब प्रलय होता है 4,32,00,000,000 साल के बाद, तब वे बादल वर्षा करते हैं, है ना। तो सोचिए कितने भयानक बादल थे वो। तो उन बादलों ने जो है मतलब ब्रज को घेर लिया और वर्षा शुरू की। तो वर्षा दो प्रकार की थी, एक प्रकार की वर्षा थी बूंदों की, तो बूंदे कितनी बड़ी थी, वो हाथी के बराबर। आप सोचिए कितनी बड़ी बूंदे थी, कितनी बड़ी बूंदे थी, हाथी के बराबर बूंद, ऐसी वर्षा सोचिए। और धारा की वर्षा जो थी वो कैसी थी, हाथी के सूंड के जैसी। कैसी धारा थी, हाथी के सूंड के जैसी, है ना। और ओले गिर रहे थे, ओले जो गिर रहे थे वो कितने बड़े बड़े ओले थे, पर्वत के शिखर के जैसे। सोचिए अब कितनी भयानक वर्षा, है ना। बहुत बड़ा संकट ब्रज में आ गया, तो सब जो है शीत से कांपते हुए और अपने बच्चों और कुटुंबों को साथ में लेकर के नंद के महल के सामने आए और कृष्ण और बलराम को जो है पुकारने लगे कि अब आप इस संकट से हमारी रक्षा करिए। तो भगवान कृष्ण चूंकि अपना अपनी महिमा को छिपाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, बालक की लीला कर रहे हैं, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि देखो आप लोगों ने जिन गिरिराज की पूजा की है तो वही आप लोगों की रक्षा करेंगे, चलो हम लोग वहीं पर चलते हैं। तो भगवान जो है इस प्रकार से अपनी महिमा को छिपा करके वहां पर आए, चलो सब लोग गिरिराज के पास चलो, और गिरिराज को उठा लिया भगवान ने, हाँ? और फिर जो है सबसे कहा, सब ब्रजवासियों को कहा कि अब आप लोग बिल्कुल डरना नहीं मेरे हाथ से, हाँ? कि मेरे हाथ से छूट जाएगा, आप लोग बिल्कुल मत डरो और इस गर्त के अंदर आ जाओ, यहाँ आपको इंद्र का कोई भय नहीं। तो सब जितने ब्रजवासी थे उस गोवर्धन के गर्त में आ गए। अब सोचिए भगवान ने पर्वत उठाया तो वो जो गर्त था, गड्ढा था, तो उसमें तो पानी आएगा, है ना। तो भगवान ने जो है जब देखा कि पानी आ रहा है उस गड्ढे में, तो भगवान ने अपने दो सेवकों को याद किया, एक तो सुदर्शन चक्र और दूसरे शेषनाग, है ना। तो सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, तो भगवान की आज्ञा से सुदर्शन चक्र ऊपर आकाश में स्थित हो गए करोड़ों सूर्यों के समान, उन्होंने जो है तेज प्रकट किया और ऊपर का पानी ऊपर ही ऊपर सोख लिया। अच्छा नीचे पानी जो आ गया था वो तो आएगा गड्ढे में, तो उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए शेष जी को आज्ञा दी, तो शेष जी ने चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना दी। कैसी बाउंड्री वॉल, वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ बाउंड्री वॉल, है ना। तो इस तरह से जो है उस गर्त में कोई पानी नहीं आ रहा था, और 7 दिन तक खूब पानी बरसा, लेकिन अब तो पानी ऊपर ही ऊपर सूख रहा था, पानी नीचे आ ही नहीं रहा था, है ना, और किसी प्रकार का भी संकट नहीं था। तो 7 दिन के बाद इंद्र आए ब्रज में ये देखने के लिए कि क्या हालचाल है ब्रजवासियों का। तो उनको पता चला कि हालचाल तो सब बहुत बढ़िया है, बहुत सुरक्षित है, तो हमारा ही हाल चाल सब बेकार हो रहा है। तो इंद्र ने देखा कि ये जो है जो पर्वत है, तो पर्वत के द्वारा ब्रजवासियों की रक्षा हो रही है, तो पर्वत का तो उनके पास इलाज है। इंद्र के पास क्या होता है? वज्र है ना, तो वज्र से पर्वत को चूर्ण कर देते हैं। तो उन्होंने तो सोचा कि अभी मैं इस पर्वत को चूर्ण करूंगा, है ना। तो भगवान ने क्या किया, इंद्र की भुजा स्तंभित कर दी। अब चलाओ वज्र, अब कैसे चलाएंगे वज्र, हाथ क्या हो गया पैरालाइज। अब इंद्र भागे, इंद्र भागे कि ये बहुत बड़ा उनके ऊपर संकट आ गया है ना। और जब इंद्र भागे तो जितने भी देवता की सेना थी वो सब इंद्र के पीछे पीछे भागी, और जितने बादल थे वो सब भागे, बहुत बड़ा संकट आ गया है, सब भागे। और पूरा आकाश जो है खुल गया, और भगवान जो है सब ब्रजवासियों को कहते हैं कि अब आप लोग जो है बाहर निकल आओ, और अब बाहर जो है कीचड़ का एक नाम भी नहीं, सब मतलब ज्यों का त्यों कुछ भी मतलब वो नहीं था, क्योंकि मतलब कहें कि भाई पानी बरसा हो और कोई संकट आया हो, कुछ भी संकट के लक्षण नहीं थे। तो सब ब्रजवासी आ गए, और अब कृष्ण से जो है इंद्र अब क्षमा मांग रहे हैं। तो ये जो कथा है ये मैं आगे की सुना रहा हूं, तो आप लोग सुनिए। नारद जी कहते हैं, राजन, नारद जी सुना रहे हैं इस कथा को राजा बहुलाश को, जो कि मिथिला के राजा हैं। हे राजन, तब गर्भ गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। इंद्र ने कहा, आप देवताओं के भी देवता, सर्वसमर्थ पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम उत्तम, प्रकृति से परे तथा परात्पर श्री हरि हैं। हे जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तम देव देवा परमेश्वर प्रभु पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम उत्तम परात्परस्तु प्रकृति परो हरि माम पाहि पाहि जुपते जगतपते। धर्म गौ और वेद की रक्षा करने के लिए 10 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंस आदि दैत्यों के विनाश के लिए अवतीर्ण हुए हैं। दशावतारो भगवान स्वमेव निरक्षया धर्म गवान श्रुतेश्च अद्य विजातः परिपूर्ण देवान कंसादि दैत्येन्द्र विनाशनाय। आपकी माया से जो मोहित है, जो मद से उन्मत्त है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मुझे अपराधी को क्षमा कीजिए। तो देखो ये गुण है देवताओं में, ये गुण है। देवता भी अपराध करते हैं, असुर भी अपराध करते हैं, देवता भी अपराध करते हैं, लेकिन जैसे ही देवताओं को संकट प्राप्त होता है तो वे होश में आ जाते हैं। ये अंतर है, ये असुर होश में नहीं आते हैं। जैसे रावण था, असुर है, तो सीता का अपहरण किया, तो ये अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध इंद्र ने जो है ब्रजवासियों को नष्ट करने का जो प्रयास किया, तो कोई अंतर तो नहीं, अपराध तो बराबर है। ये अंतर क्या है इंद्र में और रावण में, कि रावण के ऊपर संकट आ रहा है और उसके एक एक करके सब पुत्र कौत्र और जो है सेना राक्षस कुटुंबी सब मारे जा रहे हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता है ना। असुर लोग जो है अपने घमंड को नहीं छोड़ते, अपने आसुरी भाव को नहीं छोड़ते, वो उनकी संपत्ति होती है। दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोधा पारुष्यम ये विचार अज्ञानम चा अभिजात से पार्थ संपदम आसुरी। असुरों की संपत्ति है अज्ञान, क्रोध, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये असुरों की संपत्ति होती है, किसको छोड़ते नहीं है, है ना। ये अंतर है देवता असुरों में, ये अंतर है, नहीं तो अपराध में कोई कम नहीं है। इंद्र भी, रावण ने जो अपराध किया तो इंद्र का अपराध क्या कोई कम है रावण के अपराध से, है कि सब ब्रजवासियों को नष्ट करना है, सब गऊओं को नष्ट करना है ना, सबको नष्ट करना है ना, तो कोई कम अपराध नहीं है। लेकिन जैसे ही संकट आया इंद्र के ऊपर, तुरंत होश में आ गए, है ना, कि कैसे अब मैं प्रसन्न करूं भगवान को, है ना। तो ये अंतर है। तो इंद्र ने जो है ये प्रार्थना की कि मैं आपका अपराधी इंद्र हूं और आप मुझे क्षमा करिए, जैसे पिता पुत्र को क्षमा करे। जन्माया मोहित चित्त वृत्तिम मदोधतम हे रणभाजनम पितेव पुत्रम द्रुपते क्षमस्व प्रसीद देवे स जगन्निवास। हे देवेश्वर हे जगन निवास मुझ पर प्रसन्न होइए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है, गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है, गोपालों के पति गोपियों के भर्ता और गिरिराज के उद्धरता को नमस्कार है। करुणा के समुद्र जगत के विधाता विश्व मंगलकारी और जगत के निवास आप परमात्मा को प्रणाम है, जो विश्व विमोहन और करोड़ों कामदेवों के मन को मथ देने वाले हैं। उन दस भानु नंदिनी के स्वामी और नंदराज के कुल दीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों के पति गोलोक धाम के अधिपति और बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री नंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय ते संख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम दिशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते। नारद जी कहते हैं इंद्र के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रातः काल उठकर पाठ करेगा वो कितना इसका महत्व है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसे किसी संकट से भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया। इति स्तुत्वा हरिम देवम सर्व देव गणेश कृतांजलि पुटो भूता प्रणना में पुरंदर। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न सुरभि गौ ने उस गोवर्धन पर्वत पर आकर अपने दूध की धारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया। फिर एरावत हाथी ने गंगा जल से भरी हुई चार सूनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। हिराजन फिर हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ लेकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगे। सर्वैर देव गंधर्व किन्नरान तुष्टुस्ते हरिम राजन हर्षिता पुष्प वर्षिणः। इस प्रकार वहां श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक पूजा समर्पित करने के पश्चात इंद्र आदि देवता जय जयकार पूर्वक फूल बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्ग लोक को चले गए। प्रदक्षिण कृत्य हरिम प्रणम्य वे दत्ता बलिन सत्र पुरंदरादय जय ध्वनि कृत्य सुपुष्प वर्षिनो यो सुरा सौख्य युता त्रिविष्टपम। हे राजन जो श्री कृष्ण अभिषेक की इस कथा को सुनता है, सुन रहे आप लोग जो सुन रहे हैं वो सुन लें, इसका जो है महात्म्य है। जो श्री कृष्ण अभिषेक की इस कथा को सुनता है वो दस अश्वमेध यज्ञों से अधिक फल को प्राप्त करता है। हरि बोल। फिर वह परम विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है। हरि बोल। कृष्णाभिषेकस्य कथां शृणोति यो दशाश्वमेधावृताधिकं फलं प्राप्नोति राजेन्द्रस एव भूयसः परम पदं याति परस्य वेधसः। तो एक और कथा है बहुत सुंदर है, तो अभी क्या 9 बजे तक समाप्त करना है? 9 बजे ठीक 9 बजे समाप्त करना है, तो सुनिए। मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्नोत्तर के लिए भी कुछ समय मिल सके। तो नारद जी कहते हैं अच्छा ले सकते हैं, धन्यवाद। नारद जी कहते हैं हे राजन इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है। गोवर्धन के महिमा के संबंध में एक प्राचीन इतिहास है जो बड़े बड़े पापों का विनाश करता है, उसको अगर आप सुनेंगे तो। अत्र वोदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण महापापम प्रणश्यति। तो सब लोग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कान खोल के सुन रहे हैं ना, कान खोल के सुन रहे हैं। सुनिए। गौतमी गंगा के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। गौतमी गंगा और उसके तट पर एक ब्राह्मण था, क्या नाम? विजय नाम था। अपना ऋण वसूल करने के लिए पापनाशिनी मथुरापुरी में आया। व्यापारी था तो अपना ऋण वसूल करने के लिए कहां पर आया? मथुरा में आया। अपना कार्य पूरा करके जब अपने घर को लौटने लगा तो गोवर्धन के तट पर गया। गोवर्धन के तट पर जाने का कोई इरादा नहीं था, वो रास्ते में गोवर्धन पड़ गया। तो हे राजन वहां से उसने एक गोल पत्थर ले लिया। गोल पत्थर है, उसको गोवर्धन का कुछ महात्म्य पता नहीं है। गोल पत्थर मिला कि अच्छा चिकना पत्थर है, ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब ब्रज मंडल से बाहर निकल गया, तब उसने अपने सामने जाता हुआ एक घोर राक्षस देखा। उसका मुंह उसकी छाती में था। तो कितना भयानक राक्षस, मुंह जो है कहाँ था? छाती में था। उसके तीन पैर और छह भुजाएं, परंतु हाथ तीन ही थे। भुजाएं छह, हाथ तीन, हाथ तीन ही थे। ओठ बहुत मोटे और नाक एक हाथ ऊंची थी, एक हाथ ऊंची नाक। उसके सात हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। कितना भयानक। रोए कांटों के समान थे। रोए कैसे थे? कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल थी। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। हे राजन, वो राक्षस बहुत भूखा था, अतः घुर घुर शब्द करता हुआ वहां खड़े ब्राह्मण के सामने आया। कौन ब्राह्मण था वो? विजय सामने आया। हे राजन, तब ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। वो पत्थर तो बड़ा अच्छा था, तो वो उसको फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन संकट आने पर क्या किया, अपनी रक्षा के लिए वो पत्थर मारा उस राक्षस को। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वो राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। हरि बोल। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। बनमाला, पीतांबर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में बंसी और बैठ लिए वो दूसरे कामदेव के समान दिखाई देने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। पद्म पत्र विशालाक्ष श्याम सुंदर विग्रह बनमाली पीतवासा मुकुटी कुंडलान्वित बंसीधर वेत्रहस्ता कामदेव इवापरहा भूत्वा कृतांजलि वेत्रम प्रणनामे मुहुर्मुहु। तो क्या सुना? उस राक्षस का शरीर दिव्य हो गया और ब्राह्मण को प्रणाम करने लगा। बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। अब उसको तो कुछ पता नहीं कि उसने तो अपने रक्षा के लिए पत्थर मारा है, लेकिन ये कह रहा है कि तुम तो जो है सबका जो है उद्धार करते हो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा गुण है, वो ऐसे बोल रहा है। हे महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पत्थर के स्पर्श से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ है नहीं था। वो कहता है और वो सोचता है क्या हो गया है? मैंने तो पत्थर फेंका था अपनी रक्षा के लिए है? और ये मुझे क्या बोल रहा है? ब्राह्मण बोला, हे सुब्रत, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। कौन बोला? विजय है। बोला, तुम्हारी बात सुनकर तो मैं बड़ा आश्चर्य मुझे हो रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझमें तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है, मुझमें तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पत्थर के स्पर्श का क्या फल है ये भी मैं नहीं जानता। मैंने पत्थर फेंका था तो ये सोच के थोड़ी फेंकता था कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा है? मुझे तो कुछ पता नहीं पत्थर के स्पर्श का क्या फल है। अच्छा तुम्हें बताओ, तुम्हें बताओ, मैंने जो पत्थर तुमको फेंक के मारा था तो उसका क्या फल है स्पर्श करने का, ये तुम्हें बताओ मुझे। विस्मित स्तव वाक्य हम न त्वां मोहते तुम च महान पाषाण स्पर्श न फलम न जाने वै सुव्रत। सिद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गिरिराज हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरि तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम। तो हे विप्रवर, आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन किया, स्पर्श किया और वहां स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है। वो बोल रहा है, कौन? जो पहले राक्षस था, अभी क्या हो गया है? भगवान का पार्षद बन गया है, भगवान जैसा स्वरूप उसको प्राप्त हो गया है। यदि आपको विश्वास ना हो, कह रहा है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। मैं बड़ा पापी था किंतु गोवर्धन की सेना का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लिया है। न मन से चेन माम पश्चिमा पात दिनम परम गोवर्धन शिला प्रसाद कृष्ण सारूप्यताम गतम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अभी सोए नहीं, हरि बोल, सोए नहीं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने फिर प्रश्न किया। सिद्ध बताया गया जो ब्राह्मण ने पूछा, हे महाभाग, इस समय तो तुम साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? अभी तो तुम बहुत दिव्य रूप में दिखाई दे रहे हो, अभी कुछ देर पहले तुम क्या थे? बड़े भयानक राक्षस थे। तो तुमने कौन सा पाप किया था? सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई। अब सुने ध्यान से, क्या हुआ? जुआ खेलने की आदत पड़ गई। धूर्तों और जुआरियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं एक वेश्या में आसक्त हो गया और कुपथ पर चलने और मदिरा से उन्मत्त रहने लगा। अब देखिए, जुआ और फिर वेश्यावृत्ति और फिर नशा, मद्यपान, है ना, ये सब हो गए। इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से बड़ी फटकारें मिलने लगी। एक दिन मैंने माँ बाप को तो जहर देकर मार डाला। देखो कितना कितना भयानक पाप है। माता पिता को क्या किया? जहर देकर मार डाला। और अपनी पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला और रास्ते में तलवार से काटकर उसकी हत्या कर दी, पत्नी की। इस तरह उन सबके धन को हथिया कर मैं उस वेश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। ये मेरी दुष्टता का परिचय है। दक्षिण में जाकर मैं अत्यंत निर्दयता पूर्वक लूट पाट का काम करने लगा। एक दिन उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में धकेल दिया। कितना, है ना, अब वो भी आश्रित थी है? उसके अंधेरे कुएं में धकेल दिया। डाकू तो मैं हो गया था, मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतारा। धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्याएं की। मतलब एक से एक बढ़कर के पाप। और फिर क्षत्रियों की हत्या, वैश्यों की हत्या और शूद्रों की हत्या तो हजारों तक पहुंच गई। ब्राह्मणों की हत्या सैकड़ों में है? और शूद्रों, क्षत्रियों, वैश्यों की हत्या हजारों में। एक दिन की बात है, मैं मांस लेने के लिए, मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहां एक सांप के ऊपर मेरा पैर पड़ गया, उसने मुझे काट लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई। यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझ दुष्ट और महापापी को भयानक मुद्गरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचाया। मुझे महादुष्ट मानकर कुंभी पाक में डाला गया और वहां एक मनमंत्र तक रहना पड़ा। कुंभी पाक नरक जो है खोलता हुआ तेल होता है ना, और उसमें जो है मुझे डाला और मर नहीं सकते उसमें। सोचिए खोलते तेल में कितना कष्ट होता है, ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो यातना शरीर है, चिल्लाता है लेकिन मरता नहीं है ना। और एक मनमंत्र तक कुंभी पाक नरक में रहा। एक मनमंत्र 30 करोड़ साल का है, कितना कितनी यातना। इसके बाद तप्त सूर्य नामक नरक में मुझ दुष्ट को एक कल्प तक भोगना पड़ा। एक कल्प होता है 4,32,00,000 साल। तप्त सूर्य नरक, तप्त सूर्य नरक है जिस स्त्री के साथ व्यभिचार किया उसी स्त्री की मूर्ति जो है लोहे की तपा करके और उसको जो है उसी प्रकार से उसको आलिंगन कराते हैं। इसमें जो है कितने समय तक कष्ट भोगा मैंने? एक कल्प 4,32,00,000 साल, इतना कष्ट भोगा। इस तरह 84,00,000 नरकों में प्रत्येक में अलग अलग यमराज की आज्ञा से मैं एक एक वर्ष तक पड़ता और निकलता रहा। फिर 84,00,000 नरकों में भी एक एक साल, एक एक नरक में, तो कितने साल तक? 84,00,000 साल, 84,00,000 साल और कितनी यातना है। देखो पहले तो कितना था? एक मनमंत्र 30 करोड़ साल, फिर 4,32,00,000 साल और फिर 84,00,000 साल और कितना नरक है। तब भारतवर्ष में कर्म के अनुसार मेरा 10 बार तो सुअर की योनि में जन्म हुआ। 10 बार सुअर की योनि में जन्म हुआ। फिर 100 बार व्याघ्र की योनि में जन्म हुआ। फिर 100 जन्मों तक ऊंट की योनि में जन्म हुआ। इसके बाद 100 जन्मों तक भैंसा का जन्म मिला। इसके बाद 1,000 जन्म तक मुझे सांप, सर्प की योनि में मुझे आया। कितना नरक के आने के बाद ही जो शेष पाप बचे हैं उनको भी भोगना है, अभी मनुष्य नहीं बना। फिर कुछ दुष्ट मनुष्य ने मिलकर मुझे मार डाला। हे विप्रवर, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य वन में ऐसा विकराल और महाखल राक्षस हुआ। 10,000, जैसा कि आपने मुझे अभी देखा। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में अविष्ट होकर में ब्रज में आया। वहां वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्याम बनने वाले श्री कृष्ण के पार्षद निकले और मुझे पीटने लगे। मतलब मैं था 10,000 साल तक ऐसे जल शून्य जंगल में कि जहां पानी ना मिले, तो पानी के बिना बहुत प्यासा था। तो सोचा कि एक शूद्र के शरीर में प्रवेश करके जमुना जी का तो पानी पी लूंगा। तो जमुना जी के तट पर आया तो जमुना जी से ही निकले कृष्ण के पार्षद और मारा मुझे और मुझे निकाल दिया वहां से। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रज भूमि से इधर भाग आया। 84 कोस ब्रज मंडल से बाहर निकाल दिया उन्होंने मुझे। मैं प्यास नहीं बुझा पाया। जमुना जी में प्यास बुझाने के लिए आया था, प्यास नहीं बुझा पाया मैं। तब से बहुत दिनों तक मैं भूखा रहा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ पर आया। इतने में तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। हे मुनि, मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई जिससे मेरा कल्याण हो गया। मुमुक्षुतो बहु दिनेश त्वां खादितुम तुम इहा गतहं तावत्ताडितोऽहं गिरिराजास्मना मुनि। श्री कृष्ण कृपया साक्षात कल्याणम मे बभूवः। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वो इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। कहां से आया? गोलोक से आया विशाल रथ उतरा। वो हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जोते हुए थे। देखो गोलोक धाम का रथ कैसा है। हे राजन, उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस रथ में लाखों पार्षद बैठे। मंजीर और क्षुद्र घंटिकाओं से आच्छादित वो रथ अत्यंत मनोहर दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वो रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उस दिव्य रथ को नमस्कार किया। वो रथ आया था किसको लेने के लिए? इसी राक्षस को जो अभी श्याम सुंदर रूप धारण के। तो दोनों ने नमस्कार किया उस रथ को। हे राजन, तब वो सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ हो दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रात पर श्री कृष्ण के लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण परम मनोहर है। हे राजन, वो ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया, इसलिए वहां से लौटकर समस्त गिरिराज के देवता गोवर्धन गिरी पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। हे राजन, इस प्रकार मैंने ये विचित्र और उत्तम श्री गिरिराज खंड तुम्हें कह सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्र दंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता है। हरिओम। इदं मया ते कथितं प्रचण्डं समुत्थितं श्री गिरिराज खण्डं श्रुत्वा जनः प्राप्तपीनः प्रचण्डं स्वप्नेऽपीं पश्येन् यमम् उग्र दण्डम्। जो मनुष्य गिरिराज केश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नूतन केली के रहस्य को सुनता है, वो देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। यह सुनोति श्री यह सुनोति गिरिराज यशस्यम गोपराज नव केली रहस्यम देवराज एव सोत्र समेति नंदराज एव शांतिम अमुत्र। तो ये बहुत सुंदर कथा थी जो हमने आपको सुनाई है और अभी कुछ समय बचा है हमारे पास में। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। दंभ, दंभ का मतलब होता है दिखावा, ठीक है। और कोई आज की विषय से हाँ जी, जैसे हमने अभी पढ़ के सुनाया तो उसमें तो भगवान ने व्यवस्था कर दी वर्षा की ना, कि ऊपर ही ऊपर क्या हो रहा है। तो इसमें ज्यादा विस्तार से वो कथा का ज्यादा विस्तार है कि करोड़ों सूर्यों के समान सुदर्शन चक्र को जो है भगवान ने आज्ञा दी तो ऊपर ही ऊपर वर्षा को जो है उसने पी लिया है ना। अगस्त मुनि ने जैसे समुद्र पी लिया था, ऐसे सुदर्शन चक्र जो है उस वर्षा को पी रहा है। और भगवान ने देखो अगर चाहते तो उन बादलों को ही जो है नष्ट कर सकते थे, उड़ा सकते थे, लेकिन भगवान ने इंद्र के प्रयास में कोई बाधा नहीं डाली, क्योंकि भगवान के पास हजारों उपाय हैं, है ना। इसलिए भगवान ने जो है इंद्र के प्रयास में कोई बाधा नहीं डाली, है ना। और जो है जो पानी आ रहा था, गर्त में पानी आ रहा था, उसके लिए भगवान ने क्या किया? शेष नाग को आज्ञा दी, वाटर प्रूफ बाउंड्री वॉल, है ना। इतना पानी था, नहीं तो गड्ढे में आता पानी, है कि नहीं। तो भगवान की मतलब ऐसी व्यवस्था थी। और कोई है जी? जो पानी उधर था जो पानी उधर था वो सुदर्शन चक्र ने ऊपर तो सब सुखा ही दिया था और कुछ मतलब गर्मी से वो भी सूख गया और बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया। ठीक है ना, और कोई? हाँ जी, जब व्यक्ति नरक में मतलब जाता है तो ऐसा काम क्यों करता है? यही तो प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया है कि कई बार तो लोगों को पता भी है किसका दंड मिलेगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनकी श्रद्धा ही नहीं होती है और वो जो है मतलब मानते नहीं कि हम मानते नहीं है कि नरक होता है, हम तो मानते नहीं कि अगला जीवन होता है, मरने के बाद ही सब कुछ खत्म हो जाता है। आजकल तो यही शिक्षा, आजकल ही